कर्मकांड शिविर लेक्चर नंबर 12।
ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ सुखात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोकेशवसाहूनं, नमो नने निषन्दं असहायपरस्तमं महावीरं, वन्धुदयसत्तजुस्तम् सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमीचंद जी ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लिखा है और उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ पढ़ रहे हैं। प्रकृति बंध की पश्चात यहाँ भी स्थिति बंध का प्रकरण शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने बंध के चार प्रकार देखे थे, याद है ना कि भूल गए? कौन से चार? प्रकृति बंध, प्रवेश बंध, स्थिति बंध। प्रकृति बंध के बाद यहाँ स्थिति बंध की पहली बात उठाई। ये प्रश्न लगे फिर आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न है अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण गुणस्थान के जो भाग किए हैं, अभी जो हमने देखे ना विच्छित्ति की अपेक्षा, वे बढ़ती विशुद्धि की अपेक्षा है या काल अपेक्षा या अन्य कोई अपेक्षा? बढ़ती हुई विशुद्धि की अपेक्षा बताएंगे तो प्रति समय विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती है, तो जितने उसके अंतर्मुख के असंख्यात है उतने भेद करने पड़ेंगे। ये विशुद्धि की अपेक्षा यहाँ भेद नहीं है, तो किस अपेक्षा से? तो कौन सी प्रकृति? यहाँ तो हमने जो उसके भेद किए हैं तो बंध विच्छित्ति की अपेक्षा से उसके भेद किए। पहले भाग में निद्रा प्रचला का बंध था, उसकी विच्छित्ति हुई। छठे भाग में वो 30 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है और अंतिम सातवें भाग में 4 की विच्छित्ति। नवे में ऐसे ही इसी की अपेक्षा उसके भेद किए, क्योंकि पहले भाग में वेद का उदय है, एक कषाय का उदय है, और बंध पुरुष वेद का है और 4 कषाय का है। यानी पहले भाग में 5 प्रकृतियां बनती है, दूसरे भाग में 4 बनती है, तीसरे में 3 बनती है। इसको बंध स्थान भी कहते हैं, प्रकृतियों के बंध स्थान। 5 प्रकृति का बंध, उसमें 1 की विच्छित्ति हुई, 4 का बंध, फिर 1 की विच्छित्ति हुई, 3 का बंध, फिर 1 की विच्छित्ति हुई, 2 का बंध, फिर 1 की विच्छित्ति हुई, 1 लोक का बंध होगा तो उसकी भी विच्छित्ति हो जाएगी। इसकी अपेक्षा ये 5 हमने नवे गुणस्थान के भेद किए, यही उसकी अपेक्षा है। अंतर्मूर्ति ही, अभी अंतर्मूर्ति के भेद बहुत है अब उसमें और इतने अंतर्मूर्ति के प्रोसेसेस होते हैं। हाँ, एक प्रश्न है गुजराती में। गुरुदेवश्रीए आटला वर्ष सुधी प्रवचन में कर्णान योग ना उल्लेख कर्या छे, तो इमने क्या थी आवाज सीखी के जानी? हिंदी में बताती हूँ इसका अर्थ। गुरुदेव श्री ने कांजी स्वामी के इतने सब सालों में प्रवचन किए हैं, उनके सभी प्रवचनों में कर्णान योग की अत्यंत सूक्ष्म बातें आई हुई है और ये सत्य है, क्योंकि उनके हमारे यहाँ ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है कि उसके प्रवचन हमने उसका अध्योपान स्वाध्याय सामूहिक रीति से भी न किया, स्पर्शन रीति से तो किया ही है। सारे उनके आगम हमारे 5-5, 6-6, 10-10 बार पढ़ के हुए हैं, तो उसमें जो कर्णान योग के पॉइंट्स है वो सब हमने नोट डाउन किए हैं हर एक पुस्तक में। इतनी सूक्ष्म बातें उसमें आती है कि अभ्यास लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये सूक्ष्म बात कहाँ से निकालनी है, ये सही है। तो जब हमारा यहाँ पर ये 6 घंटों के प्रवचन का सिलसिला चला था ना, पहले पंचलब्धि बाद में जैन भूगोल का भी लिया था, 2005 की बात है मेरे ख्याल से, तब भी ये प्रश्न ऐसा ही उठा था। तो मैंने तब बताया था कि गुरुदेव ने धवला शास्त्र के ऊपर प्रवचन किए थे। उस शिविर में सोनगढ़ की महिलाएं आई थी, ये ब्रह्मचारिणी बहन, तो उन्होंने पूरे सभा में कह दी कि हाँ, हमारे यहाँ दो बार धवला के आठवें भाग तक उनके प्रवचन हुए थे। पर उस समय में वो रिकॉर्डिंग की सिस्टम तब नहीं बनी थी। हाँ, छोड़ाला से वो है ना, ये अपने नवनीत भाई, हाँ, उन्होंने वो तो रिकॉर्डिंग चालू किया था। परंतु उनका तो सामूहिक रीति से तो उन्होंने पढ़ाई था, उनका अपना पर्सनल अभ्यास था। जय धवला भी उनके यह शास्त्र मिला ना उनके यहाँ, धवला के, जय धवला के भी, उसके भी उनके रेफरेंस बहुत आते हैं। यानी इन सभी शास्त्रों का उनका सही अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास था। वो कितने ये नियम सार वगैरह के उसमें भी, वो पाताल वगैरह ना, लवण समुद्र के पाताल वगैरह, उसकी भी चर्चा आती, कितनी सभी बातों की चर्चा आती उसमें। यानी हाँ, न्याय नहीं, इन्होंने करना नहीं, उसकी बात पर पूछी, पर न्याय ग्रंथों का तो आता ही आता है। उन्होंने तो कितनी सिंपल भाषा में कितने कितने न्याय प्रस्तुत किए हैं, नहीं उनकी तो गजब की बात है। और उनके सामने जो श्रोता है उस अनुयोग द्वारा वैसा उसका कथन आता है। द्रव्य अनुयोग की मुख्यता क्यों, वो लोभ जैसा हुआ था ना, कर्णानुयोग का निषेध नहीं था उनको, द्रव्यानुयोग को समझते नहीं थे सिद्धांत। यानी सारे निमित्ताधीन दृष्टि जा या जो कर्ता बुद्धि, ये जो सब बातें चल रही थी कि शुभ भाव से ही धर्म, ये सब तो उसका डटकर निषेध किया उन्होंने। तो इसलिए सामने जैसे श्रोता बैठते हैं उस पद्धति से उस अनुयोग का वहाँ उपदेश भी होता है, इसलिए दूसरे अनुयोग का वहाँ निषेध नहीं होता है। यदि कोई उसका अनुयोगों का निषेध करता है तो वो तो भगवान की वाणी का निषेध करता है। हाँ, किसी अनुयोग में अपनी बुद्धि नहीं चलती हो तो बात अलग है, परंतु हर अन्य जीवों को भी उससे ऐसा मत करो ये तुमको कुछ नहीं समझेगा, ये बात कभी नहीं की। कि हमारे यहाँ तो उदाहरण है, हमारे यहाँ स्वाध्याय में आते उनको पता है, अश्विन भाई नाम के एक व्यक्ति आते हैं, तो पहले में पहले कहीं जाते नहीं थे। तो माटुंगा में मेरे 6 प्रवचन हुए थे वो कर्णानुयोग के ऊपर, तो वो सुने तो उन्होंने कि ना, मैं इनके यहाँ जाऊँगा। उनकी पत्नी ने कहा नहीं जाना, क्योंकि अभी जीव कांड का ज्ञान मार्गणा का प्रकरण चल रहा है जो टॉप मोस्ट बहुत डिफिकल्ट है, आपको कुछ नहीं समझेगा। तो उन्होंने मुझे ये बात कही थी, मैंने बोला ऐसा कभी नहीं कहना। तो तब से उनका आना शुरू हुआ। अब ये सब इनको पता है, जय धवला सुनने वाले हैं, जय धवला सुनने वाले, हाँ वो ये तो नहीं, अपने ये सिंगर जी जानते हैं, आपने सुना होगा ना, वो प्रश्न पूछते हैं हमें बहुत धवला में, इसमें ये सारे जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, धवला, जय धवला, महाधवला, सभी में इतने इन्हें एक्सपर्ट हो गए हैं, और 2-4-6 महीने के बाद फिर डरते डरते द्रव्यानुयोग के स्वाध्याय में आकर बैठने लगे। कंडीशन क्या थी मुझे प्रश्न नहीं पूछना, क्योंकि द्रव्य क्या मालूम नहीं, गुण क्या मालूम नहीं, पर्याय क्या मालूम नहीं है, फिर भी अभी मुझे पढ़ना है। तब से फिर वो गाड़ी चालू हो गई उनकी, अभी तो दोनों का अभ्यास। यानी किस जीव का कहाँ से कैसे प्रवेश होगा पता नहीं चलता, किसको किसकी रुचि से कैसे आगे बढ़ सकता है। किसी को रुचि है तो कभी रोक नहीं लगाना कि मत आना करके, बच्चों को भी नहीं। मैं तो कहती हूँ आप जितना नहीं पिकअप करेंगे उतना बच्चे पिकअप करते। तो उनका अपना अभ्यास था खुद का, और शास्त्रों में द्रव्यानुयोग में जहां तहां उन्होंने उसके रेफरेंस भी दिए। कर्णानुयोग की बहुत सारी बातें आती है उसमें, क्या कहते हैं। तो गुरुदेव के बारे में तो निषेध भी होता था ना समाज में, मुनियों कर जाके बताते थे ये देखो ये कौन है, कांजी स्वामी स्थानकवासी थे, अपने आए हैं, दिगंबरों को समझा रहे हैं, क्यों नाते कुते वाले, ऐसा सुना कि नहीं सुना। तो उस जमाने में 1953 की बात होगी शायद, शांति सागर महाराज हुए, उनका एक मसवर नाम का गांव है, वहाँ उनका तो पंच कल्याण था, मेरे नाना जी ने कराया था। तो वहाँ उनका वो उतरे थे ना गाँव के बाहर नदी के उस पार जंगल में उनका डेरा था। तो वहाँ बहुत सारे समाज के जो अपने को मुखिया समझने वाले, हाँ श्रावक, जा पहुँचे। महाराज बोला महाराज एक फरमान निकालना, क्या है ये, कौन है वो कांजी स्वामी कहलाते अपने को, और वो ऐसा ऐसा कहते, ये सब उसकी बातें। तो आप उसका निषेध करो। तो महाराज ने बताया, मेरे सामने समेसा रखोगे तो मैं तो यही बात करूंगा। ये उनके शांति सागर जी के चरित्र में भी लिखा है, और मेरे माँ के सामने ही चर्चा हुई थी। मेरी माँ अभी जिंदा है 93 ईयर्स की। लास्ट कर्मकांड के शिविर में भी उनके सामने मैंने ये बात की। आप थे 2010 में शायद आए थे। यानी देखो, जिसका सही अभ्यास है वो दूसरे का निषेध नहीं करेगा। हाँ, अनुयोगों की भाषा अलग अलग होती है। चरणानुयोग की भाषा होती है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हम करो ऐसा करो। परंतु जहाँ द्रव्यानुयोग की भाषा है, अध्यात्म ग्रंथ है, वहाँ उसकी भाषा ऐसी है, उसी भाषा में आपको उसका सही अर्थ समझना चाहिए, अपेक्षा समझना चाहिए। चलो, अभी ये आपके प्रश्न का उत्तर। गुरुदेव ने क्या खिला लो? आगम मा खिला लो। अपने घर की कोई बात नहीं की, जो कोई उन्होंने द्रव्यानुयोग की हो या कोई भी बात की है वो आगम के अनुसार ही बताई है, उसमें कहीं पर कोई हेरा फेरी नहीं की है। और जिसकी बात परंपरा आगम से नहीं है, कोई अपना ही नया मार्ग काटता हो, निकालता हो, तो वो बात सही नहीं हो सकती। ये कोई अपने अपने ग्रुप्स या पंथ ऐसा नहीं बने, वो मूल महावीर का मार्ग वो बता रहे, जो कुनकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, हमारे अनेक आचार्यों ने बताई थी, उसी की बात उन्होंने हमको सरल करके समझाई है। यानी उसमें कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं रखा है, इतना सरल करके बताया है। अभी हम यहाँ आते पेज नंबर 139। अब स्थितिबंध को कहते हैं। हमने क्या देखा था? स्थितिबंध किसको कहना? कर्म बनती है तो जीव के साथ कितने साल तक वो रहेगी, कितने, तो उसको कहेंगे उसके वो स्थितिबंध, वो काल। तो ये उत्कृष्ट स्थितिबंध भी पहले मूल प्रकृतियों में बताएंगे कि कौन सी प्रकृतियों का स्थितिबंध कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल। एक समय में बनने वाला वो कर्म, वो कैसे कैसे उसमें निषेध रचना वगैरह, तो कितने काल तक रहेगा, उसके बाद यहाँ बता रहे। देखो, सबने वो तो 70 कोड़ा कोड़ी का सुन के रखा है ना, और सबको हर समय ऐसा नहीं बंद हो रहा है। हाँ, देखो ये उत्कृष्ट स्थिति बंध 127 की टीका में बता रहे। देखो यहाँ कहते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय में, यह मूल प्रकृतियों की बात ले रहे हैं। 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। किसकी बात चल रही है? उत्कृष्ट स्थिति बंध, मैक्सिमम पॉसिबल बंध, एक समय में इतना कर सकता है कि इतने काल तक वो परमाणु बंधे हुए जीव के साथ सत्ता में रह सकते हैं, इसको कहेंगे उत्कृष्ट स्थिति बंध। अभी हमने ये देखा था, वो 3 आयु की बात छोड़ो, स्थिति बंध मैक्सिमम कब होगा? जब संकलेश ज्यादा होगा। यहाँ योग से कुछ नहीं लेना देना, जहाँ संकलेश ज्यादा है यानी तीव्र कषाय है, वहाँ स्थितिबंध ज्यादा होता है। जहाँ कषाय मंद है, वहाँ स्थितिबंध कम होता है। ये रूल प्रशस्त प्रकृति में लगता है कि अप्रशस्त में? दोनों में। स्थितिबंध में तो डायरेक्ट कह दो कि दोनों में लगता है, अनुभाग बंध में फिर सोचना है। अनुभाग में क्योंकि कोई प्रशस्त प्रकृति है, कोई अप्रशस्त है, उसके लिए सोच समझ कर उसका उत्तर निकालना पड़ता है। ये स्थितिबंध तो आसान है एकदम। तो स्थितिबंध में हमें क्या देखना है? उत्कृष्ट स्थितिबंध मूल प्रकृतियों में कितना हो सकता है। तो यहाँ क्या है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय, कितना लिखा है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। नाम और गोत्र में 20 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहनीय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर। देखो कर्म का इन जनरल बंध पूछेंगे मैक्सिमम कितना, तो हम कहेंगे 70, और वो किस अपेक्षा से? मोनी। मोनी में भी किसकी अपेक्षा से? तो अकेले मिथ्या से, इसमें भेद करके बताएंगे। अगर चारित्र मोनी का पूछेंगे तो उसमें जो चारित्र मोनी की जो कषाय है उसका 40 कोड़ा कोड़ी सागर बंध होता है। देखो इन कर्मों का जिनका 30 कोड़ा कोड़ी सागर बंध होता है, कर्मों को कहते हैं किसी कर्म, TCE, जो इनका 20 कोड़ा कोड़ी सागर उनको कहीं BCE और 40, ऐसे 3 गुण के शब्द। क्यों? क्योंकि आगे चलकर जहां उनका बंध घटता चला जाता है ना, काम और श्रेणी वगैरह में, तो वहां पर भी इसी प्रपोर्शन में उनका बंद होता रहता है। उनके नाम ही बीसीए पीसीए और चालीसी है। जो बीसीए है उससे डेढ़ गुना होगा पीसीए का, और बीसीए से दो गुना होगा चालीसी का। केवल उनके नाम आते हैं शास्त्र में, उसकी चर्चा भी, उसके यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। हमें मैक्सिमम स्थितिबंध कौन से कर्मों का कितना हो सकता है वो बात हमने देखी। यहाँ पर देखो आयु में कितना हो सकता है, वहां कोड़ा कोड़ी शब्द नहीं लगाना, कोड़ा कोड़ी नहीं, 33 साल कोड़ा कोड़ी नहीं आता। कोड़ा कोड़ी का अर्थ है करोड़ गुना करोड़। यहाँ आयु में मैक्सिमम आयु कितनी बन सकती है, 33 साल। यहाँ आयु इन जनरल, कौन सी आयु नहीं कहा। अगर हम आपको पूछेंगे कौन सी आयु 33 सागर की हो सकती है, अकेले देवायु नरकायु भी इतनी हो सकती है। और मनुष्य आयु मैक्सिमम कितनी होगी, 3 पल्ले, 3 इंच आयु भी इतनी होगी क्या। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, उत्तर प्रकृतियों की बात में करेंगे, अभी हम मूल प्रकृतियों की बात करेंगे। ये मैक्सिमम इतना उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करेगा, तो ज्यादा संकलेश वाला ज्यादा करेगा। यहाँ संकलेश विशुद्धि किसको कहना, तीव्र कषाय है वो संकलेश है, मंद कषाय है वो विशुद्धि है। जैसे मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि में भी जैसे परिणाम अलग अलग होते हैं ना, बहुत कभी तीव्र क्रोध करेगा या कोई जो शोक तीव्र करेगा, इस तरह से संकलेश परिणाम उसके जो है
उस सामने वाले के उससे देवशास्त्र गुरु सच्चे देवशास्त्र गुरु का है तो मंद कषाय है।
हाँ, वो अभी उसके अलग अलग अभी तत्व विचार में भी मंद कषाय है, समझ में आती है ना। अन्य भी आपको एक दूसरे को मदद करे तो भी मंद कषाय है, अति तीव्र कषाय तो नींद में भी नहीं होगी तो जागृत अवस्था में होगी। वो सब कंडीशंस एप्लीकेबल है उसके अंदर। पर्याप्त होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, तीव्र संकलेशी होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय को इतना स्थितिबंध होगा, इतना स्थितिबंध ये असंगी को चतुरिंद्रिय को द्विंद्रिय को उनको नहीं होगा। ख्याल में आती है, समय दृष्टि हो जाएगा तो बंद सारे अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण हो जाते हैं। तो इतना बंद किसको होगा उत्कृष्ट, तो मिथ्या दृष्टि को होगा, और किसको होगा, संगी पंचेंद्रिय को होगा। उसमें से किसको होगा, तो तीव्र संकलेश वालों को होगा। ये सारी कंडीशंस उसमें आती है। अभी यहाँ कितना बंद होता है बस इतनी हम चर्चा करेंगे। अब ये उत्तर प्रकृतियों की बात थोड़ी यहाँ पर देखते हैं, 140 पेज पर। देखो ज्ञानावरण की तो 500 है, तो जो ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति बनती कितनी देखी हमने, 30 कोड़ाकोड़ी, तो उसके 500 प्रकृतियों की भी 30 कोड़ाकोड़ी सागर बन देगी। अब दर्शनावरण की जो हमने देखी थी उसकी भी सब उसकी 30 कोड़ाकोड़ी उसकी सभी की, अंतराय की भी सब सभी उसकी जो भेद है जितनी बनती है सबकी उतनी स्थिति बन देगी। स्थिति में कोई विशेषता नहीं होगी, सबकी समान बन देगी। अब कहते हैं वेदनीय में भी हमने देखी थी कि 30 कोड़ाकोड़ी, तो वेदनीय में उत्तर प्रकृति की अपेक्षा असाता वेदनी की 30 कोड़ाकोड़ी होगी, क्योंकि जहां संकलेश ज्यादा होगा वहां साता वेदनी बंधेगी नहीं, असाता बन रही है और वो इतनी अधिक स्थिति वाली बंधेगी। साता वेदनी का कोई बंद करता है तो उसको कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो 15 कोड़ाकोड़ी सागर। परंतु इन जनरल वेदनी का कितना पूछेंगे तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर। देखो यहां पर 140 पेज पर देख रहे हैं अभी हम उत्तर प्रकृतियों में स्थिति बंध देखते हैं, असाता वेदनीय की तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय की 19, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5, ये 19 हो गई। इन 20 प्रकृतियों का ओघम यानी मूल प्रकृतियों के समान 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण बंध है। सातावेदनीय स्त्रीवेद मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी इन चारों का तदर्धम अर्थात 15 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। यानी इतने जब तीव्र संकलेश है उस तीव्र संकलेश में ये नहीं बंधेगी, समझ में आते हैं बात? उस समय इनका बंधन नहीं हो रहा है। इनका बंधन कितने योग्य है तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर समान। पहले इस सबको पढ़ लेते, फिर उसके कुछ विशेषताएं बताऊंगी मैं। दर्शन मुनि में एक मिथ्यात्व ही बंध योग्य है, उसका 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंध है। चारित्र मुनि रूप 16 कषायों का 40 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंध है। यहाँ 9 कषायों को नहीं लिया है, उसका अलग से कहेंगे, उसका अलग अलग होता है। क्योंकि स्त्री वेद को तो हमने 15 कोड़ा कोड़ी देख ही लिया है, अभी नीचे आगे देखते हैं। हाँ, सातावेद्य ने 15 कोड़ा कोड़ी सागर मैक्सिमम सातावेद्य ने। तो मैक्सिमम बंद कहाँ होगा सातावेद्य का? दसवें गुणस्थान में। वेदनीय का बंद कितना होता है? 12 मुहूर्त। वो प्रशस्त प्रकृति है, उसका उत्कृष्ट बंद कब होगा? जब संक्लेश वाला करेगा तब। नहीं समझे? स्थिति ज्यादा कौन बांधेगा? मिथ्या दृष्टि बांधेगा कि ऊपर की गुणस्थान वाली बांधेगी? वहां अनुभव ज्यादा बंधेगा। समझ रहे ना? मैंने बोला एक घोटाला होने वाला है थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, घोटाला होगा तो सुधार भी जाएगा, तो हम विचार करेंगे हर बार उसके ऊपर। वेदनी का अनुभाग कौन सा? साता वेदनी का अनुभाग मैक्सिमम वहां बंधेगा। कहाँ? दसवें में। और स्थिति वहां मिनिमम बंधेगी, क्योंकि विशुद्धि मैक्सिमम है ना वहां पर। ख्याल में आई बात? मिथ्या दृष्टि को उसके योग्य संक्लेश में, अति संक्लेश नहीं कह रहे, अति संक्लेश में तो असाता बांधेगा। तो साता के योग्य बंधे योग्य में संक्लेश, यथा इसको कहते यथा योग्य संक्लेश में, उसको 15 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होगा। हाँ, घटती ही, अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। और जितनी स्थिति है ना, उसका बंध उससे भी छोटा होता है। कभी भी स्थिति से बढ़कर बंध नहीं होगा समय दृष्टि को। क्या कहा? जितनी स्थिति कम कर दी उसने ऑलरेडी। वो कैसे करता है कांडक वगैरह, उसकी बात अभी यहाँ नहीं है। हमने पूर्व शिविरों में लिया था उसको, तो वो स्थिति और अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंध कर देता है सत्ता में पड़े हुए कर्मों की। और वो नया बंध होगा उससे भी छोटा होगा। हाँ, उससे बढ़कर नहीं होगा। हाँ, जो छोटा होता है उसमें ही ना दिखोगा, परंतु वो तो स्थिति को क्रॉस करके ज्यादा नहीं होगा। प्रशस्त में और प्रशस्त में घटेगा अनुभव, प्रशस्त में बढ़ेगा। देखो आगे पढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ। संस्थान और सहनन में, अंतिम हुंडक संस्थान असंप्राप्त सुपाटिका सहनन का मूल प्रकृतिवत 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। मूल प्रकृति ने नाम कर्म की जो है ना, इसलिए मूल प्रकृति का अवशेष में 2-2 कम, यानी अति तीव्र संक्लेश में ये बनते हैं तो उसमें उसकी स्थिति भी ज्यादा बनती। और जो थोड़ा संक्लेश कम है तो ये वाले नहीं बनेगी, उसके 5 नंबर वाले बनेगी, 6 नंबर के है ना। तो वामन संस्थान और कीलित सहनन का 18 कोड़ा कोड़ी सागर, कुब्जक संस्थान अर्धनारा सहनन का 16 कोड़ा कोड़ी सागर, स्वाति संस्थान नारा सहनन का 14 कोड़ा कोड़ी सागर, नगरोत परिमंडल संस्थान और वजनारा सहनन का, ये मैक्सिमम की बात चल रही है, 12 कोड़ा कोड़ी सागर, समचतुरस संस्थान और वज्रषद नाराज सहनन का 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, ये स्थिति बंध बताया। अब ये बातें तो ध्यान में रहने वाली नहीं है, हम तो यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा विषय तो केवल बहुत स्थूल है। यहाँ पर ये महाबंध में तो ऐसी चर्चा है, एक प्रकृति बनती है इतने सागर की, तो उसके साथ और कौन कौन सी बनती है, उसका कितना बंध होगा। बहुत बहुत सूक्ष्म चर्चा है अभी तो। यहाँ स्थूल रूप से कितनी कितनी बनती है उसकी चर्चा है। कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स पर हम बताएंगे किसको बनती है, क्यों बनती है, क्या है। देखो, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, इन 6 का 18 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अब मैं पूछती हूँ, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, गति जाति वगैरह, तो इनका 18 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध बताया। इनका बंध कौन करते हैं? कौन फिर से सुनना इनके नाम, द्विंद्रिय तिंद्रिय चतुरिंद्रिय जाति सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त। क्या देव इनका बंध कर सकते हैं? नारकी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन करेंगे? मनुष्य। तो मनुष्यों को 20 कोड़ा कोड़ी सागर क्यों नहीं कर रहे इसका? क्योंकि मनुष्य यदि उत्कृष्ट संकलेश करेंगे तो तिरंज गति क्यों बांधेंगे, नरक गति बांधेंगे। समझ में आती है बात? मनुष्य अति संकलेश में नरक गति बांधेंगे तो नरक गति का उत्कृष्ट बंद करेंगे वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। परंतु मनुष्य ये द्विंद्रिय तिंद्रिय जाति वगैरह बांध रहे हैं तो उसका 18 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करेंगे, यानी अति तीव्र संकलेश से थोड़े कम संकलेश में उनका बंद करेंगे। ये कहना चाहते देव अति तीव्र संकलेश परिणाम में एकेंद्रीय जाति बांधेंगे, यानी विध्यात्व का भी 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करके नेक्स्ट समय में जीव एकेंद्रीय में, कौन सा देव एकेंद्रीय में उत्पन्न हो सकता है। परंतु मनुष्य जो 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व का बंध कर रहा है उस समय अगर नरक गति बांध रहा है, यानी उसमें उत्कृष्ट संकलेश में नरक गति बांधकर नरक में जा सकता है नेक्स्ट समय में, पर एकेंद्रीय में जाने वाला मनुष्य 70 कोड़ा कोड़ी का बंध करके नेक्स्ट समय में नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अति संकलेश में नरक गति बंधेगी, एकेंद्रीय जाति नहीं बंधेगी। ख्याल में आते ना डिफरेंस उसका, ये उसके स्वामित्व की जो विशेषता है उसकी बात में करें। यानी देव है वो अति संकलेश में एकेंद्रीय का बंद करके नेक्स्ट समय में एकेंद्रीय में उत्पन्न हो सकता है, और मनुष्य अति संकलेश में क्या बांधेगा, नरक गति बांधेगा। इसलिए मनुष्यों के लिए द्वितीय वगैरह की बात 18 कोड़ा कोड़ी सागर की बताए। देखो आगे बढ़ेंगे थोड़ा, और अति शोक नपुसक वेद तिरंज गति तिरंज गत्यानुपूर्वी भय जुगुप्सा नरगति नरगत्यानुपूर्वी तेजस कारमाण औदारिक शरीर औदारिक अंगोपां वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपां आतप उद्योग निज गोत्र त्रस वादर पर्याप्त प्रत्येक, ये चार वर्णाधिचार अगुर लघु उपघात परघात उच्छ्वास चार एकेंद्रिय पंचेंद्रिय स्थावर निर्माण प्रशस्त विहार गति अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादे यशस कीर्ति, ये छ इन 41 प्रकृतियों का 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बनता है। देखो जैसे हमने अभी बताया, देव अगर एकेंद्रिय का बंद करते हैं अति संकलेश में करेंगे क्योंकि भवनत्रिका और सौधर्म ईशान, तो वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करेंगे। मनुष्य एकेंद्रिय का इतना बंद नहीं कर सकता, अति संकलेश में नर गति बांधेगा। अभी यहाँ एकेंद्रीय जाति भी बताई और पंचेंद्रीय जाति भी बताई। हाँ, मनुष्य अगर नरक गति के साथ पंचेंद्रिय जाति बांधता है तो इतनी बांधेगा। अब देवों में विचार करते, नीचे के देव जो एकेंद्रिय या पंचेंद्रिय जाति बांधते कहाँ तक, सौधर्म ईशान तक, वो संकलेश में एकेंद्रिय जाति बांधेंगे। सनत कुमार महेंद्र आदि जो है देव अति संकलेश में क्या बांधेंगे, पंचेंद्रिय जाति तिरंज गति बांधेंगे। तो उनके लिए पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट, नीचे के देव पंचेंद्रीय जाति का इतना उत्कृष्ट नहीं करेंगे, वो करेंगे इस तरह से। समझ में आती है बात? हम आगे बढ़ते देखो 141 पेज पर, हास्य रति उच्च गोत्र पुरुष वेद स्थिर शुभ शुभ सुस्वर आदे यशस कीर्ति, ये छ। देखो ये प्रशस्त है, हास्य रति वैसे अप्रशस्त है परंतु अरति शोक से जुदी है इसलिए इसको यहाँ दिया। प्रशस्त व्यागति देवगति देवगत्यानुपूर्वी 13 प्रकृतियों का तदर्धम अर्थात 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, ये उत्कृष्ट स्थिति बंध है। आहारक शरीर आहारक अंगुपांग किसके बनती है, वहां पर अंत कोड़ा कोड़ी का बंध है। तीर्थंकर प्रकृति भी सम्यक दृष्टि को बनती है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर बंध है उसका। इन तीनों का अंत कोड़ा कोड़ी अर्थात 1 करोड़ के ऊपर तथा कोड़ा कोड़ी अनेक करोड़ गुना करोड़ के नीचे इतने सागर प्रमाण है, ये किसकी बात चल रही, उत्कृष्ट स्थिति बंध की बात चल रही। हमने क्या आपको एक फॉर्मूला बताया था, उत्कृष्ट स्थिति बंध कंपैरेटिवली जो संकलेश होगा वहां होगी। तो आहारक का उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करेगा, करने वाले कौन है, सातवें और आठवें वाले। तो उसमें संकलेश कब ज्यादा हो गए सातवें वाले के, जो छठवें के सम्मुख है तब। ख्याल में आती ना, उसमें जो खीना दिखता है उसकी अपेक्षा लेना। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन करेगा? बहुत अच्छा, यानी है समय दृष्टि बांधने वाला, परंतु अभी वो मिथ्यात्व में जाने वाला है। जिसने दूसरे या तीसरे नर्क की आयु बांधी है, ऐसा जो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव है, तो मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले नियम से मिथ्यात्व में जाने वाला है। वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुकने वाला है। जब तक वो समय दृष्टि है और अभी वो मिथ्यात्व में जाने वाला है, उस समय उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा। उसके लिए संकलेश है ना वहां पर, ख्याल में आती ना। पहले नरक में जाने वाला मिथ्यात्व में जाने वाला नहीं, वो चौथे का चौथे में रहेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? पहले नरक में जाने वाला क्षय के साथ जाता है, उसका चौथा अनुष्ठान छूटने वाला नहीं है, उसके ऐसे संकलेश नहीं होंगे जो चौथे से पहले में जाने वाले के। समझ में आई बात? और वो दूसरे नरक में या तीसरे नरक में उत्पन्न होता है, तो वहां पर भी कापोत का उत्कृष्ट की ओर का अंश है, पहले नरक में जाने वाले के कापोत का जघन्य अंश है, तो उसमें उसके वहां जाने वाला उस लेशा में जाके मरेगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 141 पेज तीसरा पैराग्राफ, इसमें से कुछ नियम थोड़ा ख्याल में लेंगे ना, ये सब याद करने की बातें तो नहीं है, परंतु उसका थोड़ा, क्योंकि हमने ये बहुत सारी बातें देखी अभी। वैकिरिक शरीर और अंगोपांग का उत्कृष्ट बंध कौन करेगा? देवगति के साथ करेगा कि नरक गति के साथ करेगा? देवगति का ही शब्द 10 कोड़ा कोड़ी का हो सकता है, तो देवगति के साथ बंधेगी वैकिरिक शरीर तब 10 कोड़ा कोड़ी की बंधेगी, नरक गति के साथ बंधेगी तो 20 कोड़ा कोड़ी की बंधेगी। संकलेश कितने हैं उस पर है उसका। समझ में आती है बात? देवगति कब बांधेगा? तीव्र संकलेश में बांधेगा थोड़ा ही, नहीं ना, अति तीव्र संकलेश में नरक गति बांधेगा। इस तरह से उसके देखना है। कोड़ा कोड़ी सागर की बांधी। हाँ, हाँ, आपका ये प्रश्न है कि कोई नरक में जाने वाला तीव्र नियनीभूत का इतना उत्कृष्ट स्थिति बंध बांधा, और नरक में मैक्सिमम भी कितनी आयु है? 33 सागर, तो बाकी क्या होगा उसका? देखो सत्ता में पड़ी रहती है। अभी नरक में गया, उसका नरक गति का उदय है, तो वहां तो नरक गति नहीं बांध रहा है, तो वहां से आएगा या मनुष्य में आएगा या तिरेंज जो कुछ वहां। अभी सातवें नरक वाला तो तिरेंज में चला जाएगा, वहां नहीं नरक गति भी बांध सकता है, अन्य भी मध्यस्थ गति भी बांध सकता है, कुछ भी बांध सकता है। तो ये जो गति संबंधी या अन्य किसी भी प्रकृति संबंधी जो परमाणु है, निषेक है, वो सत्ता में पड़े रहते हैं। कब तक? अभी तो आप नरक की बात की, ऐसा जीव जिसके सत्ता में नरक गति पड़ी है, समय दृष्टि रहा, तो समय दृष्टि रहा तो 66 सागर तक रहा, फिर अंतर्मुहूर्त तक तीसरे में आया, फिर 66 सागर रहा, तो उसने नरक गति तो बांधी नहीं, तो उसके नरक गति निकल गई होगी इतने काल में? नहीं। ऐसा आता है कि जो 2000 सागर स्त्रस में बताकर बाद में भी कोई तीर्थंकर भी होने वाला हो, या कोई भी जीव है जो क्षपक श्रेणी भी चढ़ने वाला है, 90 गुण स्थान तक उसके नरक गति, तिरेंज गति, एकेंद्रिय, सूक्ष्म, अपर्याप्त, सारे ही परमाणु सभी निषेक वहां पड़े हैं। जब तक वो क्षय नहीं होता, सत्ता में से नष्ट नहीं होता, ये उसका स्वरूप। पंचेंद्रिय में आया तो नरक गति देवगति अलट पलट कर तो मिथ्या दृष्टि तो बांधता ही बांधता है, सारे ही परमाणु सत्ता में पड़े हैं। यानी शास्त्र में ऐसा आता है कि कोई जीव एकेंद्रिय में लंबे काल बिताकर त्रस में आया है, तो त्रस की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? 2000 सागर। अभी शादी में ले लेना उसको, तो 2000 के अंतिम भव में उसने वो मोक्ष जाने वाला है, तो एकेंद्रिय में बंधे हुए सर्व कर्म खलास हुए होगे कि नहीं होगे? अरे वो तो एक सागर से ज्यादा बांधता नहीं है, और यहाँ तो 2000 सागर बीता गए, एक इंद्रिय जीव, ये कोड़ा कोड़ी वाला तो पंचेंद्रिय बांधता है, एक इंद्रिय जीव मिथ्या तो कहीं उत्कृष्ट बंध एक सागर से ज्यादा नहीं कर सकता। अब पंचेंद्रिय में आएगा ना वो, अभी द्विंद्रिय तीन्द्रिय पंचेंद्रिय में आ गया, त्रस में आया ना इसमें आया, तो उसके साथ वो एक सागर में वो सब खलास होगी कि नहीं होगी कर्म, ये कहना चाहती हूँ। क्यों क्या होगा उसका? नया बंधन तो वो अलग बनेगा, उसमें बंधा हुआ रहेगा कि नहीं होगा?
उत्कर्षण हो जाएगा।
हाँ उत्कर्षण हो जाएगा, बांधते समय एक सागर की स्थिति बांधी मिथ्यात्व की, मिथ्यात्व को ले लेते हैं और यहाँ पंचेंद्रिय हुआ मान लेते हैं, जब पंचेंद्रिय होगा तो नया बंध पंचेंद्रिय के योग्य करेगा, तो उस एक सागर में शक्ति स्थिति कितनी पड़ी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, तो अपने बंध के समय से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ऊपर चढ़ सकता है। यानी अभी जो मैंने बात की 2000 सागर के लास्ट में जो चपक शैली बांधेगा उसकी सत्ता में एक दो चार में एक इंद्रियों के असंख्यात भवों में बांधी हुई सभी कर्मों की सत्ता वहां पड़ी है। सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर कहाँ है और ये तो 2000 सागर कहाँ है, ख्याल में आती है बात? यानी कर्म जो बंधे हुए सत्ता में कितने क्या क्या पड़े हैं, हम तो अभी हाँ हम अभी ऐसा है अभी हम गुरुदेव को सुनते हैं, हम ये करते वो करते, इससे कुछ नहीं मतलब नहीं है। अरे तीर्थंकर की जो तीर्थंकर होने वाला है उसके भी नवे गुणस्थान तक इसकी सत्ता पड़ी है, नवे गुणस्थान में इसकी क्षय करता है ना, ये सब आएगी सत्व में, सत्व की विचित्ति में बात आएगी, नवे गुणस्थान में जाकर वो नर गति तिरंज गति एकेंद्रीय वगैरह उस संबंधी के सब कर्मों का क्षय कर देगी, तब तक सत्ता में पड़े रहेगी, नया बांध नहीं रहा है पुराना जो कुछ, वो कैसे उदय में आता है क्या है उसके सारे अलग अलग नियम है उसकी बात करेंगे। जीव को कुछ अनफेवरेबल नहीं है, इतना संक्लेश पाप वगैरह करके बांधे है, समय दर्शन प्राप्त किया जो उसका उदय भी नहीं होने वाला है, ख्याल है? वो किस रूप से उदय में आएगा क्या वो सभी ऑटोमेटिक हो जाती है बात, इसको विश्वास नहीं है ना किसी बात है, सरल सबसे सरल है मैं कहती हूँ, परंतु उसका विश्वास नहीं, उसको जितना विश्वास एक डॉक्टर के रिपोर्ट पर है उतना विश्वास जिनवानी पर है कि आप हाथ रख के बोलो, जितना विश्वास हो डॉक्टर जो बताएगा ये करो वो करो शरीर के लिए करते कंसल्टिंग रूम में घंटों तक टाइम बिताने के लिए समय है, मंदिर जी में वो तो दूर है, डॉक्टर कभी दूर नहीं लगता, मंदिर दूर लगता है, शास्त्र सुनने के लिए टाइम नहीं है, जैसे अटपटी होती है सुबह पेपर नहीं देखेंगे तो, ऐसी अटपटी होती है अंदर से जिनवानी आज नहीं होती है, नहीं हो रही है। हम निडर निर्भय होकर अपने रूटीन हमने बना लिया बस, इसको तो जागने की जरूरत है, ये संसार का भय नहीं लग रहा है ना, इसलिए इसी में रचे पचे है, उसी को हमने रूटीन बना लिया, मंदिर में जाने को और स्वाध्याय सुनने को भी एक रूटीन बनाया है।
सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें?
अरे क्या सुनते हो फिर, गुरुदेव को भी ऐसे पूछा था सम्यक दर्शन क्यों भी बताओ, जाओ तुमको रुचि नहीं है, सके ऐसा नहीं कहते थे पुरुषार्थ की कमी है, उनको रुचि नहीं कहते, कहीं ना कहीं रुचि बाहर पड़ी है, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला, रुचि और मार्ग तो रोज सुन रहे हैं, गुरुदेव के हर प्रवचन में 15-20 बार सैकड़ों बार बातें आती है, निर्णय करना मुख्य बात है, किसका निर्णय करना है? पहले में पहले बिल्कुल भेद सब सो जानेंगे हम, द्रव्य क्या है गुण क्या है पर्याय क्या है सब विस्तार से जानेंगे, ज्ञान का विषय स्व भी है पर भी है, भेदों को भी सबको जानना है, दृष्टि यानी जो समय दर्शन जिस पर हम केंद्रित करना है, मैं जिसमें स्थापित करना है, केवल केंद्रित नहीं करना है, जिसको मैं बनाना है वो तो अभेद अखंड वो मैं हो सकता है, उसमें भेद को कोई गुंजाइश नहीं। भेद पहले हमने जान लिए है, अभी जाने नहीं, जाना है ना आपने, बस हो गया। अभी क्या करना, पूरा वो अभेद को ख्याल में लो और उसमें मैंपना स्थापित करो। अभी इसने मैंपना कहाँ कहाँ रखा है, शरीर में, नाम में, हा? अपने रागादी में, पैसे में। अच्छा, मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मुखिया हूँ, और क्या क्या है, मैं किस में स्थापित करना है। अभेद अखंड उसको शुद्ध कहा है, शुद्ध ने किसको कहेंगे, उसमें कोई भेद स्वीकार नहीं है। काल की अपेक्षा भेद करेंगे, समय समय का तो पर्याय करेंगे, गुणों में भेद करेंगे वो भी नहीं चलेगा। द्रव्य न खंडयामि न क्षेत्र न खंड, क्षेत्र का भी खंड नहीं करना है, प्रदेशों में भी कोई खंड नहीं करना है, अभेद अखंड पूरा लेना है बिना उसके भेद किए। हाँ, वो अखंड एक है ना, शुद्ध उसी को कहते हैं। ये शुद्ध जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो शुद्ध, वो शुद्ध की बात नहीं है। ये भेदों को गौण करके पूरे अभेद को लक्ष्य लेना, ये शुद्ध है। और ऐसे अभेद ये एक चीज है क्या, अनेक चीजें हैं, एक मैं हूं ना, एक स्वयं, मैं में कितने मैं होते हैं, तो वो एक खंड अखंड होता है कि टुकड़े वाला होता है। मैं एक खंड खंड जानने के लिए किए थे, भेदों को जानकर वस्तु कैसी है उसको हमने देखा था। अभी जब अभेद का लक्ष्य करना है, अगर उसके भेदों का लक्ष्य करेंगे तो उसको अशुद्ध कहेंगे। शुद्ध कहने के भी दो तीन, अभी ये द्रव्यनु का विषय नहीं, मैं बार बार पूछ रहे क्या करेंगे क्या करेंगे। हम द्रव्यनु का निषेध नहीं कर रहे, यहाँ जो विषय चल रहा है ना उसकी बात है। हम बिल्कुल कर्मों को भी जानेंगे, जीव को भी जानेंगे, जीव को भेदों को भी जानेंगे, सब कुछ निश्चित करेंगे, क्योंकि ये सब सही समझेंगे, उसके बारे में कोई निशंक हो जाएंगे, तब हम जो हमने जाना है उसमें अभी अकेले मैं, उसमें किसी अन्य को स्थान नहीं है, ना परद्रव्यम को है, ना शरीर को है, ना राग आदि को है। उसको लेना है अपने जो अनंत गुण पर्यंत अखंड अभेद पिंड जो है, कहीं पर भी उसका भेद ख्याल में नहीं लेना है। पहले हमने जाना उसमें असंख्यात प्रदेश होते हैं, पहले हमने जाना एक एक समय की एक एक पर्याय सब कुछ जान लिया, अभी सबको गौण कर दो और एक अभेद अखंड चीज ख्याल में ले लो और वो मैं हूं ऐसा नक्ति करो। हाँ, तो उससे वो समय दर्शन हो, यानी पहले मैं कौन हूं उसका लक्ष्य करेंगे, उसकी रुचि करेंगे, उसकी महिमा आएगी, तो समय दर्शन स्वयं में वो प्रकट होगा। हम तो समय दर्शन का ही लक्ष्य करके उसको प्रकट करना चाहते हैं, पर्याय का लक्ष्य हो जाता है, उसकी मानता आ रही है। देखो कोई भी एक, अभी ये समाधि तंत्र अभी हमारे यहाँ हुआ आत्मभावना, उसमें तो कितनी सरलता से बताई, गुरुदेव का है ना पुस्तक आत्मभावना, समाधि तंत्र के ऊपर उनके प्रवचन हुए थे। क्या कह रहे
शाम को यहाँ चलता है वो
समाधि। अच्छा, हाँ, अभी कोई भी उनका प्रवचन निकालो, परमात्मा प्रकाश निकालो, कुछ भी हो, एक एक पेज में कितनी बार वो कहते हैं कैसे किस तरह से करना है, क्या विधि है। अब हम यहाँ तो एक ज्ञान का विषय तो सब कुछ है, देखो सम्यक ज्ञान क्या नहीं जानता, सब कुछ जानेगा, स्व भी जानेगा, पर भी जानेगा, उसके भेदों को भी जानेगा। इसको जानने का निषेध नहीं, जानने का जो निषेध करेगा वो तो अपने स्वभाव का निषेध करेगा। परिशिष्ट समयसार परिशिष्ट में कितना खुलासा किया आचार्य अमृतचंद्र ने, ये लघु तत्व स्फोट में भी कितनी बातें उन्होंने बताई सर्वज्ञ के बारे में, बहुत खुलासा कर दिया। आप सुन रहे हैं ना केवी, नहीं सुन नहीं रहे, वो अमेरिका वाली बहन आपको देती नहीं है,
शाम को नहीं लेती है, सुबह सुनती हूँ।
इनकी बहन अमेरिका से धवला सुनती है रोज सुबह डेढ़ घंटा और शाम को दो घंटे द्रव्यान युग के हमारे प्रवचन सुनती है, स्पेशल लैंडलाइन उसके लिए रखी, रोज वहाँ 3.5 घंटे वो फोन करके फोन पर सुन रही है। स्वाध्याय वाईफाई वाली नहीं, क्या करें, जिसको रुचि है कहीं से भी मार्ग मिलता है। हाँ, अभी हम आगे देख रहे हैं, कितना हो गया 15 मिनट, ये उत्कृष्ट स्थिति बंदे किसको होता है उसकी बात चलती है, उत्कृष्ट संकलेश वाले को होती है। तो उत्कृष्ट संकलेश किसको होगा, संगी पंचेंद्रियों को होगा, जागृत अवस्था में होगा। नींद में भी इतने संकलेश नहीं होते तो हम सोके रहेंगे ऐसे ना यहाँ लिखा देखो 141 पेज पर, ये आयु का बताए ना, देवायु नरकायु का ओ यानी मूल प्रकृतियों 33 सागर मिला 141 पेज पर दूसरे पैराग्राफ की लास्ट लाइन। तीर्यंचायु मनुष्यायु का तीन पल्ले प्रमाणे उत्कृष्ट स्थिति की बात चल रही है यहाँ पर। इस प्रकार इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंधक कहा, किसका कितना है वो बात बताई। ऐसा उत्कृष्ट स्थिति बंधक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के होता है, असंगी और अपर्याप्त में पाए जाने वाले उत्कृष्ट स्थिति बंध का आगे वर्णन करेंगे। यानी असंगी में कितना होता है मैक्सिमम, चतुरिंद्रिय में मैक्सिमम कितना होता है, तीनिंद्रिय में, द्विंद्रिय में, एकेंद्रिय में, उसका बाद में आने वाला है। वह भी योग्य जीव के होता है, योग्य ने उसकी जो कुछ कंडीशन है वो वहां पर बताएंगे। योग्य योग्य दिखाएंगे, योग्य कहने से सर्व ही कर्म संसार के कारण है, इसलिए शुभाशुभ कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति, शुभ और अशुभ दोनों लिए स्थिति में दोनों को लेना उत्कृष्ट स्थिति में, वो तीन आयु को छोड़ देना। तो शुभाशुभ कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति चारों गति वाले उत्कृष्ट संकलेश परिणाम के धारक जीवों द्वारा ही बनती है, इस प्रकार भावार्थ जानना। ख्याल में आई ना बात। अब विशेष कहते हैं, अब ये तीन प्रकृतियों की छोड़ रहे हैं यहाँ पर, तीर्यंचायु मनुष्यायु देवायु को छोड़कर अन्य सभी 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध, जिसका जो यथा योग्य है उन्होंने बताया था वो उत्कृष्ट स्थिति बंध यथा संभव उत्कृष्ट संकलेश परिणामों द्वारा होता है। यथा संभव भी दिखाया क्यों, द्विंद्रिय देखा वगैरह हमने, यथा संभव 18 कोड़ा को लिखा है, उत्कृष्ट संकलेश में नर गति बांधेगा, यथा योग्य संकलेश में द्विंद्रिय आदि को बांधेगा, इसलिए यथा योग्य शब्द रहा। तथा जघन्य स्थितिबंध उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों द्वारा होता है, यानी जहां जो विषय बंध की विच्छित्ति की अपेक्षा रहेगी, जहां वो बंध की विच्छित्ति होती है वहां पर उसकी स्थिति जघन्य बनेगी। उपरोक्त तीनों आयु का उत्कृष्ट स्थितिबंध उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों द्वारा होता है। जघन्य स्थितिबंध उनसे विपरीत रूप उत्कृष्ट संकलेश परिणामों द्वारा होता है, परंतु यहाँ उत्कृष्ट विशुद्धि और उत्कृष्ट संकलेश जो बताया है वो आयु योग्य जो परिणाम है उनमें उत्कृष्ट लगाना, क्योंकि नियम क्या है, अति उत्कृष्ट में अति संकलेश में आयु का बंध नहीं होता, आयु के बंध के योग्य परिणामों की अपेक्षा ये उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं। यही पूछ रहे हैं उत्कृष्ट स्थिति बंध किसके होता है, पेज नंबर 142। उत्कृष्ट स्थिति में तो उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों द्वारा होता है, किसका, देवायु मनुष्यायु और तीर्यंचायु। देवायु 33 सागर की है, हाँ, जघन्य स्थिति बंध उनसे विपरीत रूप परिणामों द्वारा होता है। यानी देवायु का जघन्य स्थिति बंध कितना होगा, 10,000 वर्ष, वो तो उसके संकलेश में होगा। नहीं 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 नहीं, अलग अलग जीवों की बात है ना, 33 सागर का बंध कौन करेंगे, मुनिराज करेंगे, देवायु की बात चल रही है। 33 सागर का देवायु का बंध छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज ने किया, वो उसके उत्कृष्ट विशुद्ध, क्योंकि वो छठे गुणस्थानवर्ती जरूरी नहीं 33 सागर का बंध करेंगे, वो हो सकता है ना कि सौधर्म ईशान का भी बंध करें। हाँ हाँ हाँ, जो बांध रहा है उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट विशुद्धि में वो बन सकती है ना, उसके वो सारे कंडीशन शुक्ल लेशा में होना चाहिए, वो सब लगा लेना उसके ऊपर। अब 10,000 वर्ष की देवायु बांधने वाला वो कैसे होगा, उसके परिणाम विशुद्धि होगी कि इतने नहीं, संकलेश देवायु के योग्य परिणामों में संकलेश, अति संकलेश मत कहो तो नरक देवायु संबंधी संकलेश। ख्याल में आती नहीं बात,
मनुष्य क्रियाशील का उत्कृष्ट स्थितिबंध आयु संबंधी मिथ्या दृष्टि ही करेगा,
मिथ्या दृष्टि, क्योंकि भोगभूमि की आयु मिथ्या दृष्टि ही बांधता है, क्योंकि देखो भोगभूमि की आयु कौन बांधता है, देवनार की तो बांधती नहीं है, बांधने वाले कौन है, मनुष्य और तीर्थ, और मनुष्य और तीर्थ बांधेंगे तो समय दृष्टि होंगे तो देवायु बांधेंगे, तो मनुष्य और तीर्थ मनुष्य आयु कब बांध सकते हैं, जो मिथ्या दृष्टि है सब है, तो वो जो तीन पल्ले की उत्कृष्ट आयु बांधकर वहां चले जाए। उसके बारे में आयु के देवायु के योग्य जो है उसमें कंपैरिजन करना, देवा के योग्य जो है उसमें कंपैरिजन करना, नहीं संकलेश कह सकते, वैसे कृष्ण लेशा वाला भी देवायु बांध सकते हैं, उसमें कुछ नया नहीं, अभी उसमें जो बहुत डिटेल को आपको उसके जो कौन बांध सकता है, उसके स्वामी कौन है, वो सब डिटेल में लेना, उसमें लेशा वगैरह के परिणाम भी ले सकते हैं, कौन से लेशा वाला कितनी आयु बांध सकते उसके भी नियम होता है।
ये तीन आयु का देवायु मनुष्य आयु और तिर्यंश आयु, ये तीन आयु का उत्कृष्ट स्थिति बन कसाई की मंदता में होगा, विशुद्ध परिणाम में होगा,
विशुद्ध परिणाम में उत्कृष्ट स्थिति बन होगा। अब ये मनुष्य आयु तिर्यंश आयु का जघन्य स्थिति बंध कितना होगा, देवायु छोड़ो, मनुष्य और तिर्यंश उनकी जघन्य आयु कितनी बंधेगी, अंतर्मुख कौन से, वो क्षुद्र वो कहते वो लब्धि अपर्याप्त, समझ में आते हैं, तो वो यथायोग्य संकलेश में होगा ना, यथायोग्य इसलिए कहा कि संकलेश नहीं लेना है, उसमें आयु भी नहीं बनती, पर आयु बंध में भी यथायोग्य ले लेना, और वो भी कौन करेंगे, मनुष्य तिर्यंश करेंगे, क्योंकि अपर्याप्त संबंधी आयु देवनार के नहीं बांधते हैं, तो ये उसके स्वामी कौन है कितने बांधते हैं, ये बहुत चर्चा लंबी हो जाती है, यहाँ तो केवल उन्होंने स्थिति कौन है, कौन कौन क्या करते हैं उसकी बात है। देखो पेज नंबर आना है 142 पर, ये उत्कृष्ट स्थिति बंध किसके होता है ये जरा बता रहे हैं, आहारद्विक तीर्थंकर देवायु इन चार प्रकृतियों को छोड़कर शेष 116 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि जीव ही बांधता है, ये नेचुरल है, आहार द्विक बांधने वाले कौन है, सातवें आठवें वाले, तो उनकी उत्कृष्ट स्थिति भी वहीं पर बांधेगी यथायोग्य संकलेश में, जो सातवें से छठवें में आने वाले के सम्मुख है उसको वो उत्कृष्ट स्थिति बांधेगी, तीर्थंकर की हमने देखी थी नरक के सम्मुख वाला जो मिथ्यात्व तो में जाने वाला है उसके उत्कृष्ट स्थिति बांधेगी, देवाय की उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधता है, छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज बांधेंगे, और बाकी जो 116 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधता है, तो मिथ्या दृष्टि जीव ही बांधता है, इन चारों की उत्कृष्ट स्थिति सम्यक दृष्टि ही बांधता है, चारों ने ऊपर बताया हुआ आरंभिक तीर्थंकर और देवायु, वहां भी विशेष कहते हैं, देवायु की उत्कृष्ट स्थिति अप्रमत्त विरत गुणस्थान चढ़ने को सन्मुख हुए प्रमत्त विरत गुणस्थानवर्ती जीव बांधता है, कौन सा लिया, छठे वाला, सातवें वाला क्यों नहीं लिया, सातवें में भी उसका चलता है ना बंध, देखो फिर पढ़ते हम बताएंगे, यद्यपि अप्रमत्त गुणस्थान में भी देवायु का बंध है क्योंकि उसकी विच्छित्ति वहां देखी थी हमने, तथापि सातिशय अप्रमत्त में तो तीव्र विशुद्ध परिणाम पाए जाते हैं, इस कारण वहां तो देवायु का बंध ही नहीं है, और निरतिशय अप्रमत्त यानी रेगुलर छठा सातवां जो गुणस्थान है उसमें बंध है, तथापि उत्कृष्ट सिद्धि बंध नहीं होता इसलिए वहां नहीं कहा, तो क्यों नहीं होता ये नहीं कहा, क्या जब छठे गुणस्थान में 33 सागर का बंध शुरू किया है तो सातवें गुणस्थान में जाने वाला वो बंद करते करते क्या 33 सागर से कम करेगा, हाँ? उतना ही करेगा, तो यहां क्यों नहीं कहा उसको, देवायु की बंद की स्टार्टिंग जो प्रारंभ है छठे में ही होती है, सातवें में जाकर कोई प्रारंभ नहीं कर सकता। तो जो प्रारंभ किया है उस समय से अगर हम गिनेंगे नहीं, आबादा काल प्लस उत्कृष्ट स्थिति मिलकर इसको उत्कृष्ट स्थिति कहने में आता है। जैसे करोड़ पूर्व की आयु लेकर कोई मुनिराज है और वन थर्ड पूर्व कोटि बाकी है, तब उन्होंने 33 सागर की देवायु प्रारंभ की बांधना, तो बंद के समय से लेकर स्थिति गिनो। अन्य कर्मों में क्या होता है, आबादा काल स्थिति में इंक्लूडेड है, आबादा काल के बाद उदय काल है। यहाँ आबादा काल किसमें, पूर्व भूमि आबादा काल चली जाती है, आबादा काल प्लस आगे की स्थिति, तब तक वो सत्ता में रहेगा ना, उसको उत्कृष्ट स्थिति कहने में आता है। एक अपेक्षा है बांधी तो उसने 33 सागर की, हर समय 33 सागर बांध रहा है। अब मान लेते हैं अंतर्मुहूर्त तक बांधता है, अंतर्मुहूर्त तक के हम 1000 समय गिनेंगे, तो पहले समय में उसने आयु बांधी 33 सागर की। अभी इस भव के कितना काल बाकी है, वंतर पूर्व कोटि, और प्लस वो आगे की 33 सागर। दूसरे समय में अभी एक समय कम हुआ ना आबादा में से, तीसरे समय में एक समय और कम होगा, इस तरह से। इसलिए उसको पहले समय में उसकी उत्कृष्ट स्थिति बांधी ऐसा कहने में आता है, बांधेगा तो 33 सागर की हर समय में। क्या में आती ये अपेक्षा ली, उसको उत्कृष्ट स्थिति कहने में आता है शास्त्र। अंतर्मुहूर्त तक हर समय 33 सागर की स्थिति बांध रहा है, छठे में शुरुआत की, सातवें में भी उसका उतना ही बंद है, फिर भी उत्कृष्ट स्थिति छठे में क्यों कही, वो भी पहले समय में, वो यहाँ लिखी नहीं, ये विशेषता यहाँ नहीं लिखी है, अन्य आगम से मैं बता रही हूँ, उसको उत्कृष्ट स्थिति कहने में आता है। हाँ वो आबादा में से उतने कम हो चले जाएंगे, आयु की आबादा इस भव में गिनते हैं। हाँ बाद में उसका उदय चालू हो गया, बाद में जितना बांधा है ना स्थिति, उसने 33 सागर की बांधी है, तो 33 सागर आयु पूरी भोगेगा, परंतु कब शुरू होगा भोगना, इस भव जब खलास होगा या यहाँ का मरण होगा तब जाके वहां की आयु की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए पहले समय, बंधने के पहले समय से लेकर उसको गिनते हैं, तब उसको उत्कृष्ट आयु बांधी ऐसा कहने में आता है। ये आबादा और जितनी आयु बांधी उतना सब। देखो अन्य कर्मों में जो अभी आबादा का प्रकरण आने वाला है, अन्य कर्मों में क्या है, आबादा कितनी होती है, प्रोपोर्शनेट टू उसकी स्थिति। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया तो 7000 वर्ष की आबादा होती है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया तो 3000 वर्ष की आबादा होती है। तो जो 33 सागर आयु का बंद करने वाला है उसकी आबादा कितनी होती है, नियम नहीं है, वंतर पूर्व कोटि भी हो सकती है, और असंक्षेपाधा जो 8 बार नहीं बांधा और लास्ट में जाकर उन्हें 33 सागर की आयु बांधी ऐसा भी हो सकता है। ली जाती है वो आयु की स्थिति गिनी जाती है, परंतु यहाँ जब उत्कृष्ट स्थिति बांधने की जब बात आती है तो वो आबादा उसको इंक्लूड करके कहते हैं, नहीं तो छठे में कहने का प्रयोजन ही नहीं था कुछ। हाँ जितना उसने स्थिति बांधी है उतना पूरा भोगेगा, परंतु उसकी उदय शुरू कब करेगा, या आबादा खलास होने के बाद यानी यहाँ का बहुत समाप्त होने के बाद, इसलिए उसमें यहाँ से ले लेते हैं। यानी सामान्य से हम उसकी चर्चा नहीं करते, पर यहाँ इस वाक्य से ये बात सिद्ध होती है, और कहीं कहीं तो स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा भी है, आबादा को इंक्लूड करके ही उत्कृष्ट स्थिति गिनी जाती है। हो गए
आबादा को गिनते ही अगर उत्कृष्ट स्थिति कही जाती है तो उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर और आबादा का प्लस,
नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, आयु के निषेक तो उतने ही बने, कितने
आयु स्थिति बांधी है
33 सागर के निषेक की रचना हुई है, उसके आबादा कैसे कहलाएंगे, जितनी अभी आयु शेष है उतनी। हो सकता है किसी ने मरण के एक वर्ष पहले आयु बांधी 33 सागर की, उसकी आबादा एक वर्ष की कहलाएगी, किसी ने 5 मिनट पहले बांधी है उसकी आबादा 5 मिनट कहलाएगी। परंतु यहाँ जब उत्कृष्ट स्थिति गिनते हैं, जब उत्कृष्ट देवायु स्थिति का बंद किया आबादा को इंक्लूड करके लिखते, इसीलिए ये छठे वाले को लिया गया, ये मैं कहना चाहूँगा। नहीं तो छठे वाले ने भी 33 सागर बांध दिया और सातवें वाले ने भी 33 सागर बांध दिया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं किया, निशेक उतने ही बने, पर आबादा में एक एक समय कम होता गया है इसलिए उसको लिया है। अब यही रुकेंगे, बोलो 2400 भगवान।